जिन जिन व्यक्तियों के जीवन में जितना जितना अद्वैत व्यवहार अद्वैत ज्ञान है उन उन व्यक्तियों के जीवन में सुख है, शांति है, माधुर्य है, प्रसन्नता और सफलता है और प्रकृति हर कदम पर उनको सहायता पहुंचाती। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। जो आंखों से भी मजा लेना चाहते हैं, नाक से भी परचून का मजा लेना चाहते हैं, शरीर से स्पर्श का मजा लेना चाहते हैं, वो क्रियाजन्य सुख में जो लगे हैं उनकी क्या गति होगी।
हरि हरि ओ
सामर्थ्य को जो उभारता है वह आत्मस्वरूप की खबर देने वाला परमात्मा का प्रणव नाम। गायत्री मंत्र जपने वाले सज्जन भी ओम भूर्भुवः बोलेंगे और शिव मंत्र जपने वाले सज्जन भी ओम नमः शिवाय बोलेंगे। सूर्य के मंत्र जापक भी ओम सूर्याय बोलते हैं, जो सब मंत्रों का आदि और उत्पत्ति स्थान है, उद्गम स्थान और विलय स्थान है। वह चैतन्य ओम पर ब्रह्म परमात्मा में हम शांत होते जाएं। पाप ताप आकर्षण और इच्छा रूपी बुढ़िया विलय होती जाए, हरि तो मधुरता उभरती जाए, अद्वैत आत्म विद्या में प्रवेश पाते जाए। डूबते जाओ, तदाकार होते जाओ, कब तक बाहर की तालियां ठोक ठोक के अपने को थकाओगे, कब तक मंजीरे ठोक ठोक के अपने को थका थका कर यात्रा करोगे। आरंभ में थोड़ा हो गया केजी का कोर्स, फिर छलांग मारो, बिल्ली को एक डंडा ऊपर उठाने के लिए मार दिया, लेकिन दूसरे डंडे में गगनगामी करना होता है। आपके मन मति मति रूपी गिल्ली को आरंभ में थोड़ा कीर्तन का थोड़ा वैखरी का आश्रय लेकर फिर मध्यमा में चले आओ, मध्यमा से फिर पश्चंती में चले आओ और पश्चंती में फिर परा में पहुंचकर अपने परमात्मा सुख में विश्रांति पाओ। भैया आनंद है, माधुर्य है, हरि तत्वों में विश्रांति है, ओम रूपी आत्मा के आनंद में मन मति पावन हो रहे हैं। शब्द ब्रह्म का नाद ब्रह्म का आश्रय लेकर हम पर ब्रह्म में प्रवेश पा रहे हैं। सुनते सुनते आपका चित्त चैतन्य में विश्रांति पाता जा रहा है। दृढ़ भावना कर, बीम का आवाज सुनकर विशिला सर्प अपना विष भाव भूल जाता है, तो हरि नाम का गुंजन सुनकर चंचल मन अपनी चंचलता भूल रहा है, तो क्या बड़ी बात है। अगर नहीं भूलता है तो जा, तू जहाँ भागना है भाग, में तो हरि का हरि मेरे, मैं तो आत्मा में आत्मा मुझ में, मैं तो गुरु के अनुभव में और गुरु का अनुभव मेरे कानों के द्वारा मुझ में। जय जय प्रभु तेरी जय हो। जिन पर खास इनायत होती है वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को पिलाया जाता है। परमात्मा रस, परमात्मा प्यालियां, बोतल की शराब तो बाहर की प्याली में मिलती है और अल्कोहल से स्वास्थ्य की और मनमति की हानि होती, लेकिन ये फकीरों की शराब तो दिल की प्यालियों में बटती है। और तू ये मत सोचना कि हे संत रूपी मैखाने कहीं स्टॉक खत्म तो नहीं हो गया, ना ना, तू एक बूंद एक चिल्लू भी पिएगा तो तू खुद मैखाना हो जाएगा। ये वो प्यालियां हैं। आनंद होया मेरी माया, सतगुरु में पाया। सरस सुंदर तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, रक्त का कण कण तुम्हारा आरोग्य प्रद बन रहा है। यकृत मना लीवर तो हरि नाम से स्वस्थ होता ही है, विज्ञानियों ने सिद्ध किया। मंत्र विज्ञान के ज्ञाता लीवर लेजेरिया डायमंड व्हाट्स हक मैडम लॉन्गो। यकृत किडनी और गर्भाशय पर हरि नाम का अद्भुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारतीय संस्कृति केवल यकृत के लिए हरि नाम नहीं लेती, सुकृत के लिए भी लेती और सुकृत से भी पार होने के लिए भी लेती है। दुष्कृत और सुकृत के कर्ता भोक्ता भाव से भी पार होकर परमात्मा भाव में जगने के लिए हरि नाम का आश्रय लेती। भारतीय संस्कृति की बहुत ऊंची गहरी समझ है, हम उसी पद्धति से ध्यान करते हैं। केवल स्वास्थ्य का लाभ बहुत छोटा है, वो तो हो ही रहा है, स्वास्थ्य लाभ तो हो ही रहा है, पुण्य लाभ भी हो ही रहा है, लेकिन पुण्य लाभ और स्वास्थ्य लाभ पर हमारी गाड़ी नहीं रुकती। हमें तो आत्म लाभ करने की यात्रा करने का महापुरुषों ने सतपुरुषों ने संदेश दिया है, वेदों ने आज्ञा की है, हम वही प्रसाद पाने को पावन हो रहे हैं। आदि मानव ने मृत्यु से बचने के लिए अमरत्व की खोज की, उसी अमरत्व की खोज ने अमृत की खोज जगाई। देव और दानव विपरीत स्वभाव वालों में भी एक अद्वैत स्वभाव है। देव भी अमरता चाहते, दानव भी अमरता चाहते, विरुद्ध स्वभाव वाले भी गहराई में एक सूत्र से जुड़े हैं। अमरता दोनों चाहते थे, दोनों मिले आपस में, वासु के नाग का आश्रय लिया, मंद्राचल पर्वत मंथनी बनाया और सागर मथा, ऐरावत निकला और चीजें निकली, लेकिन तब तक मथते रहे जब तक अमृत न पाया। असुर भी अमृत चाहते और सुर भी अमृत चाहते, दुर्जन भी अमर सुख चाहता है और सज्जन भी अमर सुख चाहता है। वह अमर सुख तुम्हारा आत्मदेव का स्वभाव है। कीड़ी भी सुख चाहती, कुंजर भी सुख चाहता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक आत्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। शरीर में कहीं भी खुजली होती है, मक्खी मच्छर बैठता है तो हाथ ठीक जगह पर पहुंच जाता है, दूसरे का हाथ समझाने पर भी ठीक जगह पर नहीं पहुंचता, अपना हाथ उसी समय उसी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि अपना चित्त उस चेतन की सत्ता लेकर पूरे शरीर में व्याप रहा है, दूसरे का चित्त उसके शरीर में व्याप रहा है। लेकिन चित्त में चेतना तो एक ही है, लेकिन चित्त भिन्न भिन्न है। पावर हाउस का लाइट तो एक है, लेकिन फ्यूज हर घर के अलग अलग है। ऐसे चित्र भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न शरीरों में वही ज्ञान सत्ता व्याप रही है। एक ही सागर का पानी भिन्न भिन्न तटों पर भिन्न भिन्न रंग रूप का दिखाई दे सकता है। बालू तट पर साफ सुथरा और मिट्टी के तट पर मटमैला और काली मिट्टी सूरती मिट्टी के आगे कादव जैसा दिखता है, लेकिन है वही उदधि। ऐसे ही एक ही तुम्हारा चैतन्य देवों में अपने रूप से और दानवों में अपने रूप से और मानवों में अपने रूप से अमरता की खोज तो वही सब कर गए। देव दानव मिले मंद्राचल और वासुकी का आश्रय लेकर समुद्र मंथन किया और तब तक मंथन चलता रहा जब तक अमृत न मिला। अमृत का घड़ा निकला, वो बोले हम पी ले, वो बोले हम पी ले, होड़ लगी। देवता लोग ले भागे, दैत्य उनके पीछे भागे और वो अमृत कुंभ जहां जहां रखा गया और चीते पड़े वे जगाए महातीर्थ के रूप में भारतीय संस्कृति ने स्वीकार की। इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरि के द्वार हरिद्वार हर तीन साल में वो ग्रह नक्षत्रों के गणित के अनुसार वो दिन आता है और वे दिन आते हैं वहां लोग कुंभ के स्नान के लिए उभरते हैं, अमृत की इच्छा लेकर आते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों में नहाते हैं, तन में सात्विकता लाते हैं, मन में भावना भरते हैं। वो अमृत कुंभ अभी भी आत्म अमृत की व्यवस्था कराने वाले संत और सत्संग के आयोजनों के द्वारा आपके हृदय में छुपा हुआ आत्म अमृत उभारने की शक्ति सामर्थ्य और व्यवस्था अपने में संजोए हुए दुनिया के आपाधापी से थोड़े अलग होकर जब सत्संग और साधना में आते हैं तुम्हारी इंद्रियां मन में लीन होती है, मन मति में और मति उस मति दाता में जब थोड़ा बहुत विश्रांति पाती तो मानो जीवन की उपलब्धि की झलके आती है। धन्य है भारतीय संस्कृति और धन्य है भारतीय संस्कृति के संतों को और धन्य है भारतीय संस्कृति का लाभ लेने वाले जो विश्व मानव का मंगल चाहते। अद्वैत भाव में ही सार है, केवल भारतवासियों का ही भला नहीं, विश्व मानव का, प्राणी मात्र का भला, ये अद्वैत ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या रूपी सीता मां जब अयोध्या छोड़कर चलती है तो रुदन आक्रांत, निराशा, हताशा, दुख, बेचैनी, विलाप, गद्दी खाली पड़ी रह जाती है और अयोध्या का राजा दशरथ मर जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में से, जिस समाज के जीवन से, जिस देश या राष्ट्र से, जिस राज्य या नगर से, नगरवासियों से ये ब्रह्म विद्या रूपी सीता माता विदाई लेती है उनका बुरा हाल हो जाता है। दुख, बेचैनी, कठिनाइयां, दुख, दरिद्रता, खिन्नता, विपत्तियां, और जब ब्रह्म विद्या रूपी मां सीता को वापस लाने के लिए श्री राम संकल्प करते हैं तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है, हवाएं उनके अनुरूप बहती है, चंचल बंदर भी व्यू बंद होकर युद्ध करने की योग्यता अपने में निखार लेते हैं। ये प्रकृति की सुंदर व्यवस्था का दर्शन है। रीच बांदर, पठित अनपठित बंदर तो क्या की गिलहरियां भी ब्रह्म विद्या को लाने का संकल्प करने वाले श्री राम के पक्ष में काम करके अपना भाग्य बना रही। हे मानव, तू भी अपने जीवन में ब्रह्म विद्या ला, जिस विद्या से मुक्ति का अनुभव हो, जिस विद्या से सब में एक और एक में सब के दीदार हो, राग द्वेष दूसरे से होता है, भय भी दूसरे से होता है। आप कितने भी डरावने हो, अपने आप से नहीं डरते हैं। ईर्ष्या भी दूसरे से होती है, अपने आप से ईर्ष्या नहीं होती। जब ब्रह्म विद्या रूपी मां सीता आ गई तो आत्मराम की वो अर्धांगनी आई तो आत्मराम का राज्य अयोध्या में होने लगता है। तुम्हारा तन रूपी अयोध्या नवद्वार वाली देही, उस नवद्वार वाली देही में 10 इंद्रियों में रत रहने वाला ये जीव 10 रत, उसकी 3 राणियां सात्विक वृत्ति कौशल्या, राजस वृत्ति सुमित्रा और तामस वृत्ति कैकेयी, 10 इंद्रियों में रमण करने वाला ये दशरथ चाहता है कि मुझे आत्म अमृत मिले। इसीलिए तो कुंभ में भागते, कुछ फायदा मिले, कुछ पुण्य मिले, कुछ सुख मिले, कुछ मांगल्य हो, अमृत चाहता है। दैत्य के चित्त में भी अमृत की प्यास है, देवता के चित्त में भी, मानव के सुख चित्त में भी। वो जीव 10 इंद्रियों में रमण करने वाला जीव दशरथ चाहता है कि राम राज्य हो, लेकिन कीर्ति अथवा तो तमस रजस वृत्ति के चक्कर में आकर वो दशरथ राम राज्य के बदले राम को वनवास भेज देता है, वनवास राम चले जाते। तो 10 इंद्रियों में रमण करने वाले जीव की बुरी दशा होती है, छटपटा कर ये जीव बिचारा मर जाता है, फिर जन्मता है, फिर छटपटा के मर जाता है। जब तक इस देह रूपी अयोध्या में राम राज्य नहीं होता तब तक तृप्ति शांति सुख का दीदार नहीं होता, अमृत की प्राप्ति नहीं होती। राम जब वनवास जाते हैं, सीता जी साथ हैं, और सीता जी जब रावण ले जाता है और सीता जी को लाने का संकल्प करके राम और लक्ष्मण सक्रिय होते हैं तो प्रकृति उनकी अनुरूप होती है। अर्थात तुम आत्म विद्या को अपने जीवन में लाओ तो प्रकृति आपके अनुकूल होगी। आरोग्य आयु आरोग्य और पुष्टि आपको प्राप्त होगी। अद्वैत ज्ञान सारे दुखों का अंत कर देता है। अद्वैत ज्ञान के अनुरूप आचरण करो तो सारे घृणा ग्लानी भय और शोक मोह और मुसीबत को दूर कर देता है। जिन जिन व्यक्तियों के जीवन में जितना जितना अद्वैत व्यवहार अद्वैत ज्ञान है उन उन व्यक्तियों के जीवन में सुख है, शांति है, माधुर्य है, प्रसन्नता और सफलता है, और प्रकृति हर कदम पर उनको सहायता पहुंचाती है। और जिनके चित्त में अद्वैत की उपेक्षा है, देह को ही मह मानते हैं और देह के सबन काम में आने वस्तुओं को चिपक रख जाते हैं, उनको फिर कंस की, रावण की, हिटलर और सिकंदर की लाइन में रखकर प्रकृति परेशानी का पाठ सिखाती है। परेशानी का अनुभव कराकर भी अद्वैत ज्ञान का पाठ सिखाती है। ऐसे व्यक्तित्व वाले हर 12 महीने दे दिया सलाही रावण को, और हर रामनवमी को श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय धारण। जो ब्रह्म विद्या लाता है वो ब्रह्म स्वरूप श्री राम बन जाता है। फिर नाम चाहे उनका कबीर जी रख दो, नाम चाहे उनका महावीर रख दो, नाम चाहे उनका लीला शाह जी रख दो, नाम चाहे नानक देव रख दो, लेकिन वो राम की ना ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लिया। अद्वैतम ब्रह्म। द्वितीया द्वैत भयम् भवति, जहाँ द्वैत है वहाँ भय है, वहाँ राग है, वहाँ द्वेष है, वहाँ कलह है, वहाँ दुख है, वहाँ दरिद्रता है, वहाँ शोक है, वहाँ अशांति है, और वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधियाँ हैं। और जहाँ अद्वैत ज्ञान है, जहाँ सीता माता राम सहित, सीता सहित राम, राम सहित सीता अयोध्या में आते हैं तो उत्सव हो जाता है। दिए जलते हैं, मिठाइयां बटती है, नगर साफ सुथरा होता है, और राम राज्य में सब सुखी होते हैं। घर के ताले नहीं लगाने पड़ते हैं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी पड़ती है, क्योंकि राम का राज्य है। आपके चित्त में राम का राज्य हो, यही कुंभ की व्यवस्था है। इस सागर से निकले कुंभ ने, अमृत ने आत्म अमृत की प्रेरणा दी, ऋषियों की सुंदर व्यवस्था लेकर। इसलिए आप उस ब्रह्म विद्यारूपी सीता का आश्रय लीजिए। ये कोई जबरन नहीं कह रहे, प्रकृति के हर नियम में अद्वैत सत्ता ही काम कर रही है। आप एक दूसरे के भाई भांडू हैं, जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं। महामारी के रोग हैजा आदि आपके श्वासोश्वास अथवा आपके कण दूसरे को लगते तो वही रोग दूसरे को हो जाता है। पशु पक्षियों को भी आपकी बीमारियां बीमार कर देती है, और पशु पक्षियों की बीमारियां भी आपके शरीर को असर कर लेती है। आप जो श्वास छोड़ते हैं वो वनस्पति जगत लेता है, और वनस्पति का श्वास आप लेते हैं, आप उनसे भी जुड़े हुए हैं। आप सूर्य से जुड़े हुए हैं, सूर्य के अस्तित्व से ही आपके शरीर का टेम्परेचर है। ये मेरा शरीर सूर्य से जैसा जुड़ा है, ऐसा जीव जगत के सब प्राणियों का शरीर सूर्य से जुड़ा है, उसमें भी हम अद्वैत हैं। सूर्य के साथ वनस्पति जगत जुड़ा है। अगर सूर्य न हो तो वनस्पति जगत जीवित नहीं रह सकता, हो नहीं सकता। और वनस्पति जगत के साथ जीव जंतु जुड़े हैं, अगर वनस्पति न हो तो जीव जंतु न हो। और जीव जंतुओं का उपयोग करके मांसाहारी प्राणी जुड़े हैं, सब एक दूसरे के साथ अद्वैत सत्ता से जुड़े हैं। एक लॉजिकल सिद्धांत है कि जितनी चीज स्थूल होती उतनी वो कम जगह रोकती है, और सूक्ष्म हो जाए तो ज्यादा जगह रोकती है। आपका ये स्थूल शरीर है तो 5.5 फुट बाय 1.5 फुट 2 फुट तो एक जगह रोकेगा। पलंग पर पूरा आप अपने आप को पसार नहीं सकते। अगर दाई करवट ली तो बायां हिस्सा खाली रखोगे, और बाई करवट ली तो दायां हिस्सा खाली रखोगे। कमरे कितने भी बना लो, पलंग कितने भी बड़े बना लो, लेकिन स्थूल शरीर के लिए जो भी बनाया उसके अपनी लिमिट से ही उसका उपयोग करें। स्थूल शरीर की थोड़ी सी व्यापकता है, इससे ज्यादा सूक्ष्म शरीर व्यापक होता है, क्योंकि सूक्ष्म है। स्थूल शरीर अन्नमय स्थूल कणों से बनता है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। ये अन्न के कणों में से कुछ लेकर मेरा शरीर पुष्ट हुआ है, दिखता है। अर्थात अन्न जल का ये रूपांतर है, अन्न जल फल आदि का। सूक्ष्म शरीर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय 3 कोशों को एकत्रित करके मिलाया जाता है। सूक्ष्म शरीर की बड़ी पहुंच होती है। सूक्ष्म शरीर की ऐसी तीव्र पहुंच है कि तुम्हारे स्थूल साधन माइक्रोस्कोप उतनी पहुंच नहीं रखता जितना सूक्ष्म शरीर रखता है। सूक्ष्म शरीर में प्राण मय कोश, मनोमय कोश और विज्ञान मय कोश जैसे स्थूल शरीर है लेकिन प्राण में कोश बंद हो जाए, प्राण निकल जाए तो स्थूल शरीर की कोई वैल्यू नहीं। स्थूल शरीर न होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर न हो तो स्थूल शरीर नहीं टिक सकता है। सूक्ष्म के आधार पर स्थूल टिक सकता है, लेकिन स्थूल मिटने पर भी सूक्ष्म मिट जाए ये कोई जरूरी नहीं है। सोने के आधार पर गहना टिक सकता है, लेकिन गहना टूट जाए तो सोना मिट जाए ये कोई जरूरी नहीं है। मिट्टी के आधार पर सुराई टिक सकती है, लेकिन मिट्टी टूटने पर और सुराई टूटने पर मिट्टी नहीं मिटती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल जीता है, घूमता है, बोलता है, लेता है, देता है, ताजा तवाना रहता है। सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो स्थूल शरीर में बदबू और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, या तो जला दो या दफना दो। तो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गलती ये हो रही कि स्थूल शरीर की सुविधा के चक्कर में आकर हम मन को खराब करना पड़े तो कर लेते हैं, बुद्धि को खराब करना पड़े तो कर लेते हैं। लोग अपना गुस्सलखाना, अपना बाथरूम गंदा नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपना हृदय गंदा करके भी स्थूल शरीर की सुख सुविधाओं में पड़ते हैं। यही हाल होता है शराबियों कबाबियों का कि वो जिंदगी से बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। स्थूल शरीर की सुख सुविधा और मजा में अपने मन मति को चरित्र को भ्रष्ट करने वाले लोग अंत में बहुत घाटे में रह जाते। और भक्त अपने चित्त को शुद्ध पावन करने के लिए स्थूल शरीर को ठंडी गंगा में भी गोता लगवा देते हैं और शिविरों में असुविधा स्थूल शरीर की सह कर भी सूक्ष्म शरीर को और शुद्ध करते हैं और आत्मा का आनंद पाने में सफल हो जाते हैं। एक होता है क्रियाजन्य सुख, दूसरा होता है भावजन्य सुख, तीसरा होता है शांत सुख, चौथा होता है विचारजन्य सुख, पांचवा होता है कि सारे विचार और सारे सुख जहां से उत्पन्न होते हैं वे अद्वैत आत्म सुख, पूर्ण सुख। उसी पूर्ण सुख की झलक के क्रियाजन्य सुख, भावजन्य सुख, समाधिजन्य सुख, विचारजन्य सुख और स्वरूपजन्य सुख, उसी का खेल है। जैसे एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसर राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। चेले को उपदेश मिला, भजन करते करते सूक्ष्म शरीर ओजस्वी तेजस्वी हुआ, जप तप ध्यान करते विचार आया कि भगवान एक फिर चार कैसे, और एक भगवान है तो फिर वो दशरथ के एक नंदन है तो हमारे दिल में तो नहीं हुआ, अगर हमारे यहाँ है तो दशरथ के नंदन है, तो चार भगवान मानना भी व्यवहारिक है, लेकिन बोलते एकम एव अद्वितीय ब्रह्म, गुरु जी से पूछे बिना इसका निराकरण नहीं होगा। सात्विक जिज्ञासु गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करके कहते हैं कि गुरुदेव आपकी बात तो सत्य लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये मूर्खों का भाषा है। साधक बोलता है गुरुजी है तो शास्त्र के आपकी बात सत्य लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, मेरी बुद्धि में प्रवेश, मेरी बुद्धि इस विषय में प्रवेश नहीं पा रहे। गुरुजी ने कहा उत्तम जिज्ञासु है, समझदार है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, मतलब चार राम हो गए। बोले व्यवहार दृष्टि से उपाधियां है तो वो चार भी दिखेंगे और 40 भी देख सकते हो, 40 करोड़ और 40 अरब भी देख सकते हो। जैसे घड़े में आया हुआ आकाश घटाकाश, किसी मकान और मठ में आया हुआ आकाश मठाकाश, मेघ में आया हुआ आकाश बादलों में मेघाकाश, और उनसे न्यारा जो है महाकाश। तो चार आकाश हुए। उपाधि को स्वीकार करने से घड़े को होते हुए भी घड़े का आकाश, मठ को होते हुए मठ का आकाश, मेघ को हुए होते हुए भी मेघ का आकाश तात्विक दृष्टि से एक है ऐसा समझो तो महाकाश और घटाकाश एक है, जीवात्मा और परमात्मा एक है, अवतार और ब्रह्म एक है, सृष्टि कर्ता जीव और अवतार उन सब के हृदय में एक ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप अकाल पुरुष परमात्मा है। राम का साकार रूप अभी नहीं है, लेकिन राम के चित्त में जो रम रहा था वो अभी भी तुम्हारे चित्त में रम रहा है। श्री कृष्ण का साकार विग्रह नहीं है, लेकिन कृष्ण तत्व तो अभी भी तुम्हारे चित्त को अमृत के लिए आकर्षित कर रहा है। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा, मूसा का शरीर अभी नहीं है, लेकिन जिससे बुद्ध, ईसा, मूसा हुए वो चैतन्य परमेश्वर अभी भी है। ये मठाकाश कई बन बन कर चले गए, घटाकाश कई बन बन कर चले गए, मेघाकाश कई बन बन कर भाग गए, लेकिन वो महाकाश अभी भी ज्यों का त्यों है। इसी को सिख धर्म ने कहा आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक का हो से भी सत्य। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार। झोंपड़े को 10,000 हवा के झोंके मिटा देंगे तो महल को 10 करोड़ झोंके मिटा देंगे, क्योंकि जो उपजा है सो बिनसेगा, स्थूल उपजता है तो बिनसेगा, सूक्ष्म भी देर सबेर सूक्ष्म में लीन होगा, लेकिन तुम्हारा वो मैं अमृत स्वरूप न उपजता है न बिनसता है, वो ज्यों का त्यों साक्षी स्वरूप रहता है। दुख आया और चला गया, सुख आया और चला गया, चिंता आई और चली गई, मन बदमाश हुआ ये अवस्था आई और चली गई, मन सज्जन है ये अवस्था भी देख रहे, लेकिन ये मन बदलता है, मति बदलती है, इन सब की बदलाहट को जो देखता है वो कभी नहीं बदलता, वही तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है, वही तुम्हारे घट घट में बैठा है, वह जो तुम्हारे घट में है वही राम कृष्ण और ब्रह्म ज्ञानियों के उस मठाकाश में है, और वही सृष्टिकर्ता हिरणगर्भ के रूप में है, और वही परलय होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। तो परलय महाप्रलय होने के बाद भी तुम नहीं मरते हो, ये बात सिद्ध हो गई। शरीर किसी का भी सदा नहीं रहता। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो सदा नहीं रहता उसका भय क्यों, और जो कभी नहीं मरता उससे विमुखता क्यों? गलती ये होती है कि हम यह को मैं मानते हो और मैं के प्रति लापरवाही है, इसीलिए परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। तुलसीदास ने कहा घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। नानक ने कहा साध जना मिल हर जस गाये, किसी सच्चे संतों के चरणों में बैठकर हरि का जस गाए, ताकि वो सच्चे संत उस सत्य स्वरूप घट घट में बोलने वाले राम का और अवतार लेकर आने वाले राम का और सृष्टि के संकल्प करने वाले उस चैतन्य का और तुम्हारा वो भेद मिटाकर तुम्हें इसी दिल में दिलवर का दीदार कराने का ज्ञान दे डाले। तो वो परमात्मा सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। उसकी सत्यता से ये जगत की चीजें, स्थूल जगत की चीजें दिख रही है। जासु सत्यता ते कर जड़ माया, ये जड़ माया जिसकी सत्यता से दिख रही और काम कर रही। बोले बाबा जी श्रद्धा से तो मान लेते लेकिन बुद्धि में बात बैठती नहीं। भाई देखो किसी चीज का बीज लाए तो क्या बोलोगे? बीज है, उस बीज को बो दो। अब बीज तो मर गया लेकिन पौधा है, पौधा मर गया बड़ा हो गया। बोले पेड़ है, पेड़ को काट दिया। बोले लकड़ियां है, लकड़ियों को बेच दिया। फर्नीचर वाले ने फर्नीचर बनाया। बोले कुर्सी है, टेबल है उसका मौजूद। लकड़ियां जला दिया तो बोले कोलसा है, कोलसा जला दिया तो बोले राख है, राख को कहीं फेंक दिया तो बोले खाद है, और खाद में से फिर गेहूं है। जय राम जी की। तो भगवान की सत्यता से स्थूल जगत की वस्तुएं भी साइकिल की नाई घूमती चली आ रही। जो अभी मैंने पानी पिया, मेरे शरीर के कण बने हैं, वो पहले किसी के शरीर में थे और किसी के शरीर में अथवा जगह पर थे। अभी इस जगह पर है तो आशाराम बापू है। अब वो कण हर 7 साल में हड्डियों तक के कण बदल जाते तो वो दूसरे के शरीर में दूसरी अवस्था में चले जाते, लेकिन उनका अस्तित्व तो रहता है। गलती ये होती है कि जो आकृति है उसको हम बोलते हैं जिंदा है, अब मर गया चला गया, लेकिन जिनसे बना वे कण नहीं मरे, नहीं चले गए, बदले, लेकिन उनका अस्तित्व तो मौजूद रहता है। और ये जो अस्तित्व तो है वो परमात्मा के सत्य स्वरूप की लीला है। परमात्मा का एक वैदिक नाम सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। उत्पत्ति स्थिति और परलय का जो हेतु है, आधार है। तापत्रय विनाशाय आदि भौतिक, आदि दैविक और मानसिक आध्यात्मिक, ये तीनों ताप हमारे शमन हो, विनाश हो, इसलिए हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कौन सा परमात्मा है? सत है। उसका सत स्वभाव जड़ जगत में भी बुद्धिपूर्वक देख लिया। उस परमात्मा का सत फिर चित्त, चेतन स्वभाव। उस चित्त स्वभाव से जीव सृष्टि में क्रियाकलाप देखता है। पेड़ों में भी देखो, धरती से पानी का आश्रय लेकर भोजन लेने की क्षमता है, चेतना है। जीव जगत में, पशु जगत में, मनुष्य जगत में परमात्मा की चेतना दिखती है। और भगवान का तीसरा वो स्वभाव है आनंद। हर जीव आनंद के लिए यत्न करता है, लेकिन मनुष्य उस आनंद स्वरूप का अनुभव करने के लिए भगवान ने अधिकारी आकृति बनाई मनुष्य। जो बोलते मुक्ति हमें नहीं मिल सकती, भगवान हमें नहीं मिल सकता, वे बहुत बड़ी भारी गलती करते, अपने साथ घोर अन्याय करते। मुक्ति पाने के लिए, भगवान का ज्ञान पाने के लिए, भगवत सुख पाने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। मोक्ष करी द्वारा, ये मोक्ष का द्वार। बंधनों से, दुखों से, परेशानियों से छूटने का द्वार अगर है तो ये मनुष्य जन्म। जैसे कोई अंगूठा छाप गडरिया को डॉक्टर की नौकरी या सर्जन की जगह पर नहीं रखा जाता, अधिकारी होगा तभी। सिटीजनशिप है जिसकी अमेरिका में, उसके लिए वोट का फार्म नहीं दिया जाता। और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का सिटीजनशिप है तो अमेरिका में वोट नहीं कर सकता है। जो जहां का अधिकारी है वहीं उसको। ऐसे ही मुक्ति का अधिकारी जो शरीर है वो मनुष्य शरीर। और फिर वाने के भाई हमें तो कुछ नहीं हो नहीं सकता। ऐसी बेवकूफी हमने एक बार बहुत जोरदार की थी, किसी को बताना नहीं, प्राइवेट बात है। जय राम जी की। मैं बैटरी लेकर जरा स्विच दबाया तो बैटरी जली नहीं। गोला देखा ठीक है, बुलाया सेल बदले तो नए सेल लाया। मैंने नए सेल डाले बराबर, फिर भी स्विच दबाता रहा नहीं। तो मेरा एक सेवक, मेरे से बड़ी उम्र के हैं, साधु है, मेरे शिष्य 80 साल के होंगे, लंबी सी दाढ़ी। वो मेरी इस बेवकूफी को देखकर हंसे। मैं क्या, क्यों हंसता है भाई? बोले बापू, आजकल इन सेलों में आके सील लगी हुई होती है, आपको इसका पता नहीं है। तो सील होने पर नए सेल भी काम नहीं करेंगे। काम करने की इनमें योग्यता है प्रकाश करने की, लेकिन आके जो सील लगी है वो हटानी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसे ही मुक्ति पाने की योग्यता हम सब में है, लेकिन हम अधिकारी नहीं है, ये सील ठोक कर मारे जा रहे हैं। उस बेवकूफी से भी उस सच्चिदानंद ने मुझे ज्ञान दे दिया, वो कैसा प्यारा है, कैसा सहारा है, कितना बढ़िया रक्षक है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत स्थूल जगत में देखते, सूक्ष्म प्राणी जगत में देखते, और आनंद साधना ज्ञान पाकर संत हृदय में उसके आनंद का अनुभव होता है। लेकिन असाधारण व्यक्ति के हृदय में भी आनंद का अनुभव वो देता है, लेकिन वो क्रियाजन्य सुख में देता है। जैसे पति पत्नी का संयोग हुआ, क्रिया हुई, और जरा सा सेक्स का काम का सुख मिला, तो शरीर से सुख नहीं मिला, क्रियाजन्य साधन का आरंभ हुआ, सुख तो अपनी आत्मा की झलक का है। अगर शरीर से सुख मिला होता तो वो दोनों पड़े हैं एक दूसरे से मुंह मोड़ के क्यों सो जाते, चिपके रहो? नहीं, उस संयम से जो एकत्रित किया था और उस ढंग से सुख लेने की जो इच्छा थी, उस ढंग की पॉइंट पर आए, इच्छा निवृत्त हुई, हृदय में जरा सा सुख झलका, बाद में मेरा मित्र है, बहुत दूर देश में रहता है, यार 8 साल हो गए, मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर उसकी चिट्ठी आ गई तो एक बार नहीं मैं 3 बार पढ़ूंगा, देखो क्या लिखा वो आ रहा है, 27 तारीख को आ रहा है, 27 तारीख सीट 179 फ्लाइट से बॉम्बे एयरपोर्ट पे आ रहा है। वो अब आप कागज फाड़कर नहीं फेंक सकते जयराम जी की, वो कागज प्यारा लग रहा है, क्योंकि वो मित्र आए, ये तुम्हारा प्यार है मित्र के प्रति, तो मित्र का कागज भी प्यारा हो गया। ऐसे उस असली मित्र के प्रति प्यार हो जाए तो सारा जहान आपके लिए प्यारा हो जाता है। फिर तुम किससे द्वेष करोगे, किससे घृणा करोगे, किससे बेईमानी करोगे, किससे दगा करोगे? जब तुम्हारा सबके प्रति प्यार बरसेगा तो सबके हृदय में भी तो तुम ही छुपे हो, वहां से भी धन्यवाद सबसे बरसेगा, बापूजी हमारे हैं, गुरुजी हमारे हैं, ये संत बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, ये सब बोलने लग जाते हो यार। हम तो किसी को नहीं कहते कि ऐसा बोलो, अगर बोले तो लोग डंडे मारे। हम बोले कि हमारा फोटो घर में रखो, कोई आकर तुमको कहे मैं मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे फोटो पर अगरबत्ती करो, ऐसा अगर अखबार में डलवा दिए तो उस प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल होगा, सोचो जरा, जयराम जी की नहीं। ये उस अद्वैत माँ सीता का आश्रय जो लेता है वो राम की नहीं पूजा जाता है, जयराम जी की। सीता जी को लेने गए राम, मंदर तो काम में लग गए, रीछ भी लग गए, गिलहरियां भी चुप नहीं बैठी, हवाएं भी उसके पक्ष में, और पत्थरों ने भी अपना वजन कम करके सेतु बंद रामेश्वर की पुलिया का काम किया। ये प्रकृति की लीला, परमात्मा ज्ञान देने वाली माँ सीता के तरफ जो चलता है उसको कदम कदम पर सहयोग मिलता है। तो एक है क्रियाजन्य सुख, संयोगजन्य सुख। मित्र की चिट्ठी लेकर मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, ऐसी कल्पना करो, बीच में हम घूम के आए, अब समझो पहुंच गए, वो तारीख भी हो गई और जहाज नंबर 100 आ गया। अब एयरपोर्ट पर मेरी आंखें कैची किनारे घूम रही है, कई मुसाफिर उतरते हैं, मनुष्य मेरे मित्र से ज्यादा मालदार भी है, सुहावने भी है, सुंदर भी है, लेकिन वो मेरी नजर में कुछ भी नहीं। जब तक वो मित्र नहीं दिखता तब तक वो मजा नहीं आता। बस जहाज की सीढ़ियां उतर है फलाने वो सुने न सुने झलक आ गई सुख की। वो अपना सामान बामान लेकर जो बाहर निकला तो अरे यार अरे फलन अरे मिले, बस पहली सेकंड पहली मिनट जो मजा आया दूसरी मिनट में भुजाएं खुल जाती है। चलो मजा है तो चिपके रहो मजे को, नहीं है अब दूसरी मिनट में नहीं आता मजा। सामान मामा लेकर घर पहुंचे, खाए पिए बातचीत की, बोले जाओ अब आप थके होंगे। आप थके होंगे क्या, अब तुम भी सो मुझे भी छोड़ो। आप किसी को भगाना होता है तो बोलना पड़ता है आपको देर होती होगी। बुद्धू सिंह किसी के अतिथि हुए, जिसके अतिथि हुए उसकी माई के नाक में दम कर दिया, भाभी आज तो पकौड़े बनाओ और थोड़े से गोलगप्पे भी बनाओ, तुम भाभी चाट अच्छी बनाती हो। दो तीन दिन में तो भाभी की बेचारे की खबर ले ली उसने। अब उस भाभी ने क्या कहा, बोले देखो बुद्धू सिंह आपको घर छोड़े तो बहुत दिन हुए होंगे। बोले हाँ, तीन दिन तो यही हुए और चार दिन फलानी जगह पर, दो दिन फलानी जगह पर, एक दिन, दस दिन से भी कुछ ज्यादा हो गया। भाभी ने कहा देखो तुम्हारी पत्नी तुमको याद करती होगी, तुम्हारे बच्चे तुमको याद करते हुए ना, मतलब अब तुम जाओ। बुद्धू सिंह बोलता है भाभी तुम कितनी अच्छी हो, उन सबको तुम भी तो याद करती हो, मैं सबको यहीं बुला लेता हूँ। भाभी बोलती ना ना अपन उन्हीं के पास चलेंगे, पहले आप चलो फिर मैं आती हूँ। सब सुख चाहते वही क्रिया चाहते हो जिसमें सुख मिले। जयराम बुद्ध सिंह रहना चाहता है सुख मिल रहा, और भाभी भगाना चाहती है कि ये जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मित्र आए तो मैं सुखी हो जाऊं, और अब मित्र सो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जयराम जी की पत्नी मिले शादी हो जाए मंगनी हुई बड़ी मजा आती है, मंगनी हो लेकिन जिनकी शादी हो गई और बुढ़ापा हो गया उनको कोई कह दे तुम्हारी मंगनी करा दे, बोले यार छोड़िए झंझट, क्योंकि अब वो इच्छा नहीं रही। हम साधु होना चाहते थे, भागते फिरते थे और कुटुंबी हमको संसार में जोड़ना चाहते थे, तो समझा बुझा कर एक पिक्चर में ले गए, उसमें जॉनी वॉकर गाना गाता है किसी दोस्त की शादी में और बैंड भी अपने हाथों से बजाता है। अभी तो बेचारा मर गया लेकिन चित्र तो मेरे मगज में रख के गया। जब वो बरातियों के बीच दुल्हा दुल्हन के बीच आता और गाता है, यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। लेकिन पास में जिनकी शादी हो गई थी और पत्नियां अनुकूल नहीं थी, वो गालियां दे रखे, अरे बेवकूफ गधे कुछ भी नहीं रखा है मरेगा साले। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। तो ये मन ये मिल जाए ये खा लूं ये भोग लूं ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं, इस भ्रमणा में सारी जिंदगी गंवा देता है। एक जिंदगी नहीं हजारों जिंदगी लाखों और करोड़ों जिंदगियां तबाह करके आया। फिर भगवान ने करुणा करके मनुष्य जन्म दिया, श्रद्धा दी, फिर कुंभ के अवसर दिया और अवसर दिए ताकि उस आत्म अमृत को पाकर ये क्रियाजन्य भाव जन्य अमुक जन्य सुखों से ऊपर उठकर मुझ सच्चिदानंद का शुद्ध सुख लेकर मुझसे मिल जाए। तो ये क्रियाजन्य सुख का एक आज नमूना बताया। मित्र को मिलकर, पति पत्नी को मिलकर, अथवा क्रिया करके कोई चीज खाकर, सूंघ कर, ये जो सुख है ये सारा क्रियाजन्य सुख है। इसमें परिश्रम और जिम्मेदारियां ज्यादा है और सुख की जरा सी एक छिटक मात्र है। जैसे मछली को बिना सोचे कुंडी में सुख लेने के लिए लपकती है और छटपटा के मारती है। पतंग बिना सोचे दिए में सुख लेने के लिए लपकता है, छटपटा के मारता है। हाथी कागज की घास फूस के खड्डे पर बनी हुई कागज और सामान की नकली हाथिन का स्पर्श सुख लेने के लिए खड्डे में फंस मारता और फिर भूखा रखकर उसको जंजीरों से मार पीट कर बाहर भीख मंगवाते रहते हैं महावत लोग। जिंदगी भर जरा सा सुख की इच्छा से जिंदगी भर फंस जाता है। भंवर सुगंध के सुख में फंस मारता है। ऐसे ही हमारे पास पांच इंद्रियां हैं। तुलसीदास ने कहा, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच तुलसीज। उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। जो आंखों से भी मजा लेना चाहते हैं, नाक से भी परफ्यूम का मजा लेना चाहते हैं, विकारी इंद्री से भी काम विकार का मजा लेना चाहते हैं और ताकड़ दिना का मजा लेना चाहते हैं, शरीर से स्पर्श का मजा लेना चाहते हैं, वो क्रियाजन्य सुख में जो लगे हैं उनकी क्या गति होगी। क्रियाजन्य सुख से बचने के लिए भावजन्य सुख बहुत अच्छा है। गए मंदिर में, गए गंगा किनारे, गए तीर्थ में, गए जहां भावना बनती है तो वहां खर्च कम होता है, परेशानी कम होती है, लेकिन सुख क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख बढ़िया मिलता है। गए मंदिर में श्री रामचंद्र वाले ने रामचंद्र किया, आयो लाल मिड़ई कयो झूले लाल, मजा आया। ओम नमः शिवाय महेश्वराय च शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च महेश्वराय आवाहनम न जानामि न जानामि। क्या मन में थोड़ी शांति संतोष मिला। महाराष्ट्र के गणपति दादा मोरिया गजाननम बोद गणादि सेवितम कबेद जंबो फलचार भक्ष उमा सुतम शोक विनाशकर नमामि विघ्नेश्वर पादम। कुछ सुख मिला, उसमें भी थोड़े अलग अलग स्टेप है। उस इष्ट को देखते 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 एकाग्र हो जाते हैं और भावजन्य सुख उभरता है एकाग्रता। तो भावजन्य सुख में हरास कम है और कुछ सूक्ष्म शरीर की उन्नति है। क्रियाजन्य सुख में हरास ज्यादा है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का पतन। भावजन्य शरीर में स्थूल शरीर का संयम बनता है और सूक्ष्म शरीर कुछ भावना के सुख में आगे बढ़ता है। इससे भी ज्यादा भावजन्य सुख ज्यादा देर टिकता नहीं। क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख थोड़ा ज्यादा टिक सकता है। भजन के भाव में रहे, सेक्स में, काम के भाव में इतनी देर नहीं टिक सकते। पानी के तले इतनी देर नहीं टिक सकते जितना पानी के ऊंची स्तर पर आप शवासन में टिक सकते। ऐसे क्रियाजन्य सुख में इतनी देर आदमी सुखी नहीं हो सकता जितनी देर भावजन्य सुख में। क्रियाजन्य सुख में कपट, बेईमानी और सामने वाले का शोषण होता है। जिसको तुम प्यार करते हो थोड़ी देर के बाद उसकी कमर कमजोर करोगे। फिल्मी प्यार की बात करता हूं, जयराम जी की। ऐसा कोई भोगी नहीं कि जिसके संपर्क में आने से आपका शोषण न हो, और ऐसा कोई योगी नहीं कि जिसके संपर्क में आने से आपका पोषण न हो। जो दुखी है वो क्या देगा, जो सुख चाहता है वो आपको क्या देगा, जयराम जी की। जो सुखी है वही सुख देगा, दुखी दुख देगा। तो जो सुख बाहर से चाहता है तो भीतर दुखी है ना, कमी है, तभी तो चाहता। तो जो भीतर सुखी है, तृप्त है, उसके संपर्क में सच्चा सुख मिलता है। और बाकी के संपर्क में एक दूसरे को पटाकर सुखी होने की जो गड़बड़ करते, अंत में सब दुखी। जो जवानी में पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते, शारीरिक संबंध करते हैं, मैंने सुना है कि बुढ़ापे में देखा भी है कि वो बहुत झगड़ते हैं। अरे जवानी में भी जो अति एक दूसरे से सुख लेते हैं वो डाइवोर्स की जल्दी तैयारी करते हैं। धरती पर हर रोज 22,000 तलाक होते हैं और वे ही लोग तलाक करते हैं जिन्होंने देखा, एक दूसरे को खूब स्नेह किया और एक दूसरे को खूब नीचोया, इसीलिए एक दूसरे से जल्दी उब गए। क्रियाजन्य सुख का ये परिणाम है। 100 शादियों में 65 शादियां अमेरिका में तलाक में बदलती है। कनाडा में 100 शादी में 45 शादियां तलाक में बदलती। भारत में तो पहले तलाक की मुसीबत नहीं थी, अभी पाश्चात्य जगत का जो कचरा आ रहा है सैटेलाइट सिस्टम से, टीवियों से, इससे ये क्रियाजन्य सुख की भूख बढ़ गई, अशांति भी बढ़ गई, तलाक भी बढ़ गए, बीमारियां भी बढ़ गई। क्रियाजन्य सुख की ये देन है। क्रियाजन्य सुख लो लेकिन संयम से लो, भाव को आगे रखो, ज्ञान को आगे रखो। फिर भजिया खाने का सुख लो, भोजन करने का सुख लो, लेकिन उस सुख को अगर अति किया, ज्ञान और भाव नहीं रखा, तो भोजन से मंद, अति भोजन खाने से गड़बड़ हो जाएगी, अति विकार भोगने से गड़बड़ हो जाएगी। क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख अच्छा है, भावजन्य सुख से भी एकाग्रता का ध्यानजन्य सुख लंबा समय टिकता और अधिक सूक्ष्म शरीर को सामर्थ्य देता है, स्थूल शरीर को स्वास्थ्य देता है। इससे भी ऊंचा सुख है आत्मविचार जन्य सुख। जब आप शांत बैठे समाधि में बैठे तो सुखी, उठे और कहीं खटपट हुई तो फिर वो सुख कम हो गया, खटपट याद आए। लेकिन जब ज्ञान है तो खटपट भी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है और एकांत भी ब्रह्म है। जब सब जगह तू है, हवा चलती तभी भी हवा है, हवा नहीं चलती तभी भी हवा है, हम बैठे तभी भी वही है, चलते तभी भी वही है, सृष्टि में ये हो रहा है तभी भी तेरी लीला है, वो हो रहा है तभी भी तेरी लीला है। जो तिद भावे सो बलिकार, हम तुझे पहचान गए। डंडा मारने वाला भी तू है और दूध पिलाने वाला भी तू है, पट्टी बांधने वाला भी तू है और टांगे में बिठाने वाला भी तू है, यार हम तुझे जानते हैं। वो बोलते नहीं, टांगे वाला बोलता कि मैं पट्टी बांधने वाला नहीं। अरे बोले छोड़, सर्जन का रूप भी तू ही लिए बैठा है यार। ओ ज्ञानी संत सब में उसको देखते तो ज्ञान जन्य सुख में परितृप्त रहते हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। यस्य ज्ञानमयम् तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो जल्दी अपने आप को जान लेता है।